शांति। करुणा भाई जी हमारे बीच क्लास के लिए उपस्थित हैं। हम सब एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करते हैं। आप हमारे यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता हैं। मामा बाबा के समय से ही आप ज्ञान में आए और बाबा के अव्यक्त होने के बाद आप मधुबन निवासी बनकर खासकर टेलीकम्युनिकेशंस में आप अपनी सेवाएं देते रहे। वर्तमान में मीडिया विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं और पीस ऑफ माइंड चैनल जो अपना चलता है उसके आप डायरेक्टर हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM जो चलता है उसके भी आप डायरेक्टर हैं। अभी भी पब्लिक रिलेशंस में आप डायरेक्टर की तरह सभी सेवाएं देखते हैं। तो विशेष मामा बाबा के साथ के आपके जो सुंदर अनुभव हैं, उन अनुभवों से हमें लाभान्वित करेंगे आदरणीय भाई जी।
ओम शांति। मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे बाबा के लक्की मोरे रतनात्माओं से मिलने का, क्योंकि मुझे वो दिन याद आते हैं। ये मधुबन में आने का रहने का इतना चाह और तड़फ होती थी, तो यहां से हजारों मील दूर रहते हुए भी उस दिन के लिए दिल में एक तड़फ होती थी कि कब मधुबन जाए और कब बाबा से मिले। वैसे बेंगलुरु से ज्ञान को प्राप्त किया मैंने। 3 दिन के बाद ही मेरे मन में संकल्प आया कि इतना श्रेष्ठ ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान ये कौन दे रहे हैं, तो बताया कि बाबा जी आबू में है और उनमें स्वयं परमात्मा शिव अवतरित होकर ये ज्ञान दे रहे हैं, ये संदेश उन्होंने दिया। आज भी हम सबको यही कहते हैं, परमात्मा शिव ज्ञान दे रहे हैं, तो लोग सुनते हैं, बस इतना ही है। परंतु जब मैंने सुना तो मैंने दादी जी को ये उत्तर दिया 3 दिन का कोर्स के बाद, तो जब स्वयं भगवान आबू पर्वत में आए हैं और वही ये ज्ञान सुना रहे हैं तो फिर मैं यहां क्यों बैठा। इस धरती पे स्वयं भगवान आ जाए और हमको मालूम पड़ जाए और अच्छा भी लग रहा है कि सही है, तो मैंने कहा मैं फिर यहां क्यों बैठा। मैंने कहा मैं तो जा रहा हूं। तो दादी जी ने कहा ऐसा कैसे जाएगा, जैसे भी आप लोगों को भी कहते हैं ना, बाबा 1 साल के बाद जा सकते हो मधुबन और पूरी धारणा सब करने के बाद आप जा सकते हो, तो मैं तो कुमार था, 20-21 साल का था उस समय पर, 1960 की बात मैं कह रहा हूं, सन 1960 की, तो ये भी नहीं कह सकते मेरे लिए कि भाई तुम धारणा करके 1 साल के बाद जाना है, पर मैंने मन में तय कर दिया कि भाई मुझे तो जाना है। जहां भगवान स्वयं आए हो और हम और जानबूझ के फिर मैं नहीं जाऊं तो ये क्या है। तो सचमुच दादियों ने थोड़ा ज्ञान में पक्का तो करे, क्योंकि उन दिनों में बाबा ये कहते थे कोई कच्चे पक्के को ले आते हैं ना यहां, तो बाबा कोई प्रश्न पूछ लेते थे तो उसका उत्तर हम समझो सही नहीं देते तो बाबा सीधा कहते थे ये टीचर फेल है, ये टीचर है। तो इसलिए सब टीचर्स को ये ख्याल होता था कि भाई क्योंकि पर्सनल मुलाकात होती थी, थोड़े से ही तो होते थे हम। मधुबन में 10-15 लोग आए, माना हम लोग कहते थे मधुबन फुल है, अभी मधुबन में रहने की जगह नहीं है, बैठने का जगह नहीं है। वो हॉल भी आप देखेंगे तो हमारा जो 10-15 लोग बैठ के क्लास करते थे बाबा के सामने जहां पांडव भवन है उसके अंदर ही क्लास होती थी हमारी, मेडिटेशन हॉल वगैरह बाद में बना। तो हम लोगों को पक्का कराने के लिए दादियां 3 मास किसी भी तरह से हमको पढ़ाते रहे। और उन दिनों में किताब भी सच्चे गीता ज्ञान एक हिंदी में भी था और एक इंग्लिश में रियल गीता बड़ा एक था जगदीश भाई ने लिखा हुआ है। तो रात दिन स्टडी करते रहे, जितना पढ़ते जाए और उतना इंटरेस्ट आवे कि भाई नहीं ये तो भगवान ही है, ये तो और कोई नहीं दे सकता है, ये ज्ञान तो सचमुच भगवान का ही है। तो और खींच ज्यादा होते जाए और स्पष्ट होते जाए, कोई प्रश्न नहीं कि भाई सर्वव्यापी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, तो कोई क्वेश्चन उठे अनुमान होवे वो नहीं, बिल्कुल जहां देखो लाइट ही लाइट, इतना लाइट होवे। बाबा का भी बहुत चमत्कार हमने देखा था कि योग के लिए कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ता था, तो बिल्कुल ऐसे बस बाबा कहते ही जैसे आप उपराम जैसे हो जाते थे, साक्षात्कार नहीं पर हल्कापन, लाइट ही लाइट। ऐसे 3 मास तो इस दुनिया में होते हुए भी जैसे हम है नहीं, अपने को भी अंदर से दिल होती थी और बाबा भी जैसे खींचता था, जैसे मैग्नेट होके जैसे खींचता था। तो ये जब दिल में हुआ तो मुझे क्या पक्का कराते थे, तो एक बात बहुत पक्का कराते थे कि आप जब मधुबन जाएंगे, बाबा से मिलेंगे, तो बाबा एक प्रश्न पूछेंगे आपसे और आपको ये उत्तर देना है। तो प्रश्न कौन सा? तो आप बाबा से पहले कभी मिले हो? तो जो बैठे हैं बताओ, मिले हैं? सब मिले हैं, अच्छा। तो क्योंकि इसमें पहली बार मधुबन आए हुए कोई है? देखा देखा है ना, पहली बार आए हैं भाई। तो हमको टीचर्स यही पक्का कराते थे, बाबा आप तो हर क्लब में आए हैं। तो बाबा ने टीचर के सामने ही मेरे से पूछ लिया कि बच्चे आप पहली बार आए हैं ना, तो ऐसा। तो मैंने कहा हाँ बाबा मैं पहली बार आया हूं। उस समय पर हमारी जो टीचर ने जो पक्का किया था हमको, नहीं नहीं बाबा हम तो आपको 5000 साल पहले मिले थे, ये उत्तर तो भूल गए। बाबा के सामने, बाबा की इतनी शक्ति और बाबा के सामने कोई संकल्प अपना दूसरा कुछ नहीं चलता था, एकदम ब्लैंक हो जाता था, एकदम जैसे सच्चे दिल से कहा अभी तो मिल रहा हूं बाबा से, पहली बार मिल रहा हूं बाबा से, और मैं कह दूं नहीं नहीं बाबा आपसे मिला हूं मैं। तो इस तरह से बाबा ने कैसे हमको पहली बार अपनी आकर्षण से, कोई हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अपनी कोई मेहनत था, जैसे अभी आप लोगों ने बहुत दिन से प्लान किया भाई जाना है अबू, और आपको अचानक ऐसी एक चांस मिली कि मधुबन में रह के तपस्या करने का, तो आप सबने खुशी खुशी से सारी तैयारी करके जैसे आ गए, जानते हैं कि भाई यहाँ ये है, सब कुछ नॉलेज है आपके पास, और कई बार आप लोग होके भी गए होंगे, पुराने भी इसमें है, पर हम फर्स्ट टाइम हम आ रहे थे, कुछ भी नहीं पता, और दक्षिण से उत्तर में आना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इतना दूर तो वहां से आने का तो प्रश्न ही नहीं है, आजकल तो ट्रेन ये वो प्लेन सब फास्ट, उन दिनों में तो कुछ भी नहीं था। यहां पहुंचना है तो कम से कम 4 दिन लगता था, तो इस तरह की सोच भी नहीं सकते थे। परंतु बाबा का जो खींच था, इतनी मतलब जैसे नींद भी नहीं आती थी, कब रात होता था कब सुबह होता था, तो इतनी बाबा की हम लोगों को जैसे आकर्षण था बाबा का। मैं कई बार हमारी भाई बहनों से पूछता हूं तो हम लोग कितने मेहनत करते हैं, अभी पैम्पलेट बांटना, लोगों को संदेश दे, एग्जीबिशन ये वो मेला क्या नहीं किया, क्यों भाई? क्योंकि भगवान का संदेश तो देना चाहिए ना, भगवान आया है वो तो सबको बताना चाहिए ना, कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। तो मैं कई बार सोचता हूं यज्ञ की जो आरंभ हुआ शुरुआत हुआ, तो हमारे जो इतने पुराने जो दादियां सब थे, वो भी सब यंग थे उस समय पर, सब 20-25 साल के अंदर के ही सभी थे, तो इनको पैम्पलेट किसने दिया, कौन सी एग्जीबिशन देख के आए ये लोग? 380 लोग उन दिनों में थे आदि में, जब यज्ञ की स्थापना हुई लगभग 380 लोग थे, तो इन्हों को पैम्पलेट किसने दिया और कौन सी मेला देख के आए? इसका मतलब ठीक है, हमारा भाग्य बना रहा है बाबा, हमारे से सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा चाहे किसी को भी बाबा टच कर सके। बाबा की शक्ति को, बाबा की युक्ति को हम लोगों ने बहुत देखा है। आज भी आप सोच लो, एक छोटा सा परिवार आप चलाते हैं, समझो एक दो बेटियां है, तो कितनी आप लोगों को चिंता रहती है कि भाई कैसा है, ठीक है, आ गए टाइम पे, आए कहां है, एक संकल्प कैसे चलता है। तो आज वही बेटियां सारा विश्व में है, कितने 30-35 हजार बहने हैं आज, कहां कहां है, कौन ध्यान रख रहा है? तो बाप को तो चिंता होती ही है ना, तो हम सबका बाप तो शिव बाबा है, अभी तो मैं ब्रह्मा बाबा भी नहीं कहूंगा, फिजिकली तो है नहीं, शिव बाबा के साथ ही है, तो चिंता तो उसको होना चाहिए ना। पर कितना निश्चिंत है, हमारी दादियां फिजिकली है, वो लोग भी निश्चिंत है। तो करण करावन हार अपना पार्ट कैसे करा रहा है, हमको ऐसा लगता है हम भी कुछ कर रहे हैं, परंतु सचमुच जब हम ये सारी यज्ञ की व्यवस्था को देखते हैं तो कैसे बाबा स्वयं चला रहा है। भले बहुत बड़ा सेंटर है, पर जहां वो बहने रहते हैं ना, तो जब अमृत वेला जो उठते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हम और बाबा और कोई नहीं। वो तो ठीक है, जिज्ञासु आएंगे, क्लास चलेगा, होगा, वो सब है, परंतु सभी का जो बैकबोन है, आधार है, जो आज ये यज्ञ चल रहा है, हर बच्चा चल रहा है, हर बच्चे का मुख से यही निकलते हैं, हम बाबा के साथ है, बाबा हमारे साथ है। तो ये जो अनुभव है, ये भले संस्था बहुत बड़ा हो गया है, अभी हम कहते हैं 10 लाख बाबा के बच्चे हैं, कहां है, अपने अपने स्थान पे है, पर हर बच्चे के साथ बाबा है। तो ये जो करण करावनहार का पार्ट, ये हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा के साथ यहां हमको जो मिलने का आनंद जो हुआ, उस समय पर मम्मा और बाबा की जो पहली पहली मुलाकात में हमने जो एक दो बात देखी, जो आज तक भी हम भूल नहीं सकते। आध्यात्मिक शक्ति कहां तक है, जैसे शिव बाबा इस यज्ञ को चला रहा है, आप समझ सकते हो कि शिव बाबा की शक्ति कितनी है। कोई व्यक्ति नहीं है, स्वयं चला रहा है, तो ये कितनी उनकी शक्ति है। ऐसे ही जो बाबा और मम्मा जिन्होंने इस यज्ञ की स्थापना की और पालना की, तो उनमें भी हमने कुछ ऐसी शक्तियां देखी जो हम लोग पा सकते हैं, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये एक फेथ हमारे अंदर आई। भगवान की शक्ति तो है, भगवान की शक्ति है, उसका भी अनुभव बाबा ने कराया। 3 मास तो धरती पे ही नहीं था, जहां देखो लाइट ही लाइट। जब बाबा से मिलकर के जब वापस गया, एक फेथ हो गई, निश्चय हो गया, ज्ञान आ गई, तो मैंने देखा कि भाई वो जो लाइट ही लाइट देखता था, अपने आप को उड़ता था, वो कहां है। वो पूरा हो गया था। जब मैं बैठ के अपनी तपस्या करूं, अपनी साधना करूं, तब वो आनंद आता था, पर पहले बिना कुछ मेहनत के भी वो आनंद आता था। तो वो बाबा की करामत थी। इसके बाद फिर हम बच्चों को करना पड़ा। हर चीज मेहनत से प्राप्त होती है, ऐसे नहीं। मुझे कभी कभी बाबा कह देते हैं ना मुरली में, लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। मैं कभी कभी अंदर ही पूछता हूं बाबा से, बाबा ऐसा कोई ऐसा होता तो हम भी तो आए थे, तो उस समय पर हमको भी ये कह देते आप कि भाई फास्ट चला जा सकते हो, तो अब भी जो आ रहे हैं लास्ट, उन्हीं को क्यों कह रहे हैं आप कि भाई फास्ट जा सकते हो। क्या सचमुच फास्ट जा सकते हैं? क्योंकि मैं पूछता हूं कि साधना दादियों ने कौन सी साधना की, दादियों ने अमृत वेले की साधना की, उसमें कभी भी कमी नहीं था, चाहे बाबा का हो, चाहे मम्मा का हो, चाहे हमारे दादियों का हो। अमृत वेले की जो साधना है, उसमें कभी भी उन्होंने कमी नहीं रही। तो मैं यही पूछता हूं, जो लास्ट आने वाले के लिए जो बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, तो इन्होंने कौन सा अमृत वेला किया भाई, और कितनी अमृत वेला की? जो आगे आने वालों के लिए भी आज भी हम फील करते हैं कि भाई मुझे बाबा, हम तो सन 1960 में आए, हमको भी तो इससे पहले बुला सकते थे, हमारा वो जो पहला यज्ञ का पार्ट तो मिस हो गई, ऐसा हम फील करते हैं। तो इतना समय 80 साल तक यज्ञ चला, और आज कोई आए और उसको बोल दे कि भाई लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। हाँ, कोई जादू हो जाए तो हो सकता है, भगवान के हाथ में तो सब कुछ है, बाकी अपने हाथ में। साधना करनी है तो साधना में कमी नहीं हो सकता, साधना तो करना ही पड़ेगा। हमने बाबा मम्मा से पहली बात यही सीखी है कि करना ही करना है। जब तक आप नहीं करते हैं, तब तक आप प्राप्त भी नहीं कर सकते। कोई कंसेशन, बाबा कभी कभी कहते थे कि भाई चलो आप इतना भी कर लो तो फिर कमी पेशी होगा, बाबा दे देंगे, वो एक बाबा की विशेषता है। बाकी मार्क्स तो हमको ही लेना पड़ेगा, मेहनत तो हमको ही करनी पड़ेगी। तो हमने बाबा मामा में जो विशेषता देखी, जो करनी में नंबर वन है, दोनों में कंपटीशन लगता था। मम्मा इस तरफ बैठती थी, बाबा या इस तरफ की संदली पे बैठते थे, तो बाबा कहे मम्मा नंबर वन, मम्मा कभी नहीं एक्सेप्ट करती थी। मम्मा कहेंगे नहीं, बाबा बाबा, क्योंकि दोनों की जो पुरुषार्थ है उसमें हमने देखा एक से बढ़ के एक। मम्मा के लिए कहा जाता था 2:30 बजे के बाद मम्मा ने कभी सोई नहीं है, ये पूरी यज्ञ में ये बात मशहूर थी। सचमुच मम्मा 2:30 बजे के बाद कभी नहीं सोई है। बाबा, बाबा के लिए लच्छू दादी बाहर बैठी रहती थी, चाहे दिन में भी थोड़ा सा रेस्ट करना हो तो। बाबा को वाइब्रेशन की इतनी कैचिंग पावर थी, समझो भूल से भी कोई बाबा के दरवाजे के पास पहुंचे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी बस दरवाजे तक कोई पहुंचे, तुरंत अंदर से बाबा की आवाज आती थी, कौन है बच्चे। तो मुझे भी 7 दिन रहा पहली बार केवल यही देखने कि भाई बाबा सोते कब है, जागते कब है, तपस्या कब करते हैं। तो हमने ये देखा कि कब सोते हैं बाबा ये मालूम नहीं पड़ा। माना बाबा के लिए मेरा अनुभव यही रहा कि वो सचमुच एक जागती ज्योत थे। बाबा कितना बजे उठते थे, कितना बजे सोते थे, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। बाबा को जागती ज्योत का रूप में मैंने देखा, और मम्मा 2:30 बजे के बाद कभी नहीं सोया है ये भी हमने देखा। दूसरा, सबसे बड़ी एक शक्ति इस यज्ञ में, हम सब भी को इच्छा होती है ये प्राप्त हो। बाबा कई बार मुरली में बताते भी है कि बच्चे अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, कोई आते हैं तो उनको समझाने के लिए हम लोग जो कोशिश करते हैं ना, तो घंटों तक कभी कभी हमको करना पड़ता है, परंतु कोशिश हमको ये करना है कि हमारा सचमुच सफल है, सफल होता है, तो उसको हम कहते हैं परखने की शक्ति। पात्र को देख के दान करो, जो आते हैं हम तो शुरू कर देते हैं ना। तो बाबा कई बार मुरली में ये कहते थे कि इस ज्ञान में ये एक शक्ति की विशेष वैल्यू है, क्योंकि समय ही सब कुछ है। सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो समय का है, जो संपत्ति में हमारे पास जो संपत्ति, पैसा ये वो, बुद्धि ज्ञान ये सब ठीक है, पर सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो हमारा समय है। और समय को हम कितना सफल करते हैं इस बात की हमारी परीक्षा है। तो इसीलिए इस समय को सफल करने के लिए जो हम लोगों को एक प्रयास है, शक्ति, वो है परखने की शक्ति। बाबा मम्मा में ये एक विशेष शक्ति हमने देखी, कोई आत्मा बाबा के सामने आवे तो बाबा बता देते थे कि ये कौन है। और पहले पहले ये शक्ति मैंने मम्मा में देखा। मम्मा से पहली बार जब मिला, फर्स्ट टाइम, मम्मा कान में कहती है मुझे, अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है, जैसे मैं आपको कहा कि भाई मुझे खुशी है आप सबसे मिलने का, क्योंकि आप गिने चुने बाबा के बच्चे हो, थोड़े से बाबा के बच्चे चुने हुए आए हैं। मधुबन में आना, मधुबन में तपस्या करना, मधुबन का ये आनंद लेना सबके भाग्य में नहीं है। कई बाबा के बच्चे सोचते हैं नहीं पहुंच पाते। मुझे वो दिन याद आता है, एक दिन मधुबन में थोड़ी सी चर्चा चली कि ये जो बाबा को दिखाते हैं ना हम, आप बैठे हैं वहां और मधुबन का सब कुछ देखते हैं, तो थोड़ी सी यहां चर्चा चली, नहीं नहीं ये सब दिखाना नहीं चाहिए, तो लोग यहां आके देख ले। उस समय पर जानकी दादी थी और एक बाई थे ब्राजील के, केन बाई। जैसे ही उसने सुना ये बात कि भाई यहां से नहीं दिखाया जाएगा, तो उसने हाथ जोड़ के, जानकी दादी और प्रकाशमणि दादी भी थे, हाथ जोड़ के कहा, दादी जी हमारा जो देश है ब्राजील, वो भारत जैसा ही गरीब देश है। वहां के जो लोग यहां आ रहे हैं वो 20-25% लोग भी यहां तक नहीं आ रहे, बाकी सब वहां है। संख्या इंडिया जैसा ही बहुत है पर मधुबन तक नहीं आ पाते हैं क्योंकि बहुत गरीब है। तो आप ये बंद नहीं करना, बहुत निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो कभी सुनेंगे तो उनको बहुत दुख होगा, इसलिए जैसे आप दिखा रहे हो वो जरूर आप दिखाइए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परखने की शक्ति जो है वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी समय में थोड़ा सा अभी फास्ट परिवर्तन हो रहा है। अभी तक जो पुरुषार्थ करते थे, ज्ञान को समझना, ज्ञान की धारणा करना और ज्ञान की सेवा करना, ये तीन बहुत फास्ट चल रहा था। पर अब एक और पार्ट बाबा खोल रहा है। ज्ञान तो पूरा दे दिया बाबा ने, ये अव्यक्त मुरलिया जो है ना, ये ज्ञान की संपूर्णता है, रिवाइज भी हो गए हैं। ज्ञान संपूर्ण ज्ञान जिसको 18 अध्याय कहते हैं ना, 18 अध्याय का ज्ञान तो बाबा ने हमको दे दिया। उसके बाद समझ, अब हम सब जान गए हैं कि भाई अभी हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर ब्राह्मण बहुत क्लियर है, अभी किसी को ये नहीं समझाना पड़ता है कि आप ऐसा नहीं करो ऐसा करो, नहीं। अभी हम लोग इतने बड़े परिवार हो गए हैं, हम सब जानते हैं ब्राह्मण कुल की क्या मर्यादा है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से हम सबको मालूम हो चुका है। फिर बाबा की आज्ञा थी कि भाई संदेश दो संदेश दो संदेश दो, हम इसी में लगे हुए थे, वाचा से, पिक्चर से, इससे उससे, हर प्रकार से हर आत्माओं तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए, इसी धुन में थे और लगे हुए थे। पर आप देखेंगे पिछले सीजन में पूरा एक ही बात बाबा कहते थे, बच्चे अभी प्रत्यक्षता की समय आ चुका है। और प्रत्यक्षता की समय की निशानी क्या है? प्रत्यक्षता की निशानी है आपकी चेहरे और आपकी चलन से ही उनको मालूम हो जाएगा कि भाई भगवान आ चुका है। अभी तक हम लोग मुख से बोलते हैं भगवान आ चुके हैं भगवान आ चुके हैं, एग्जीबिशन में, इसमें, उसमें, हर चीज में। पर बाबा ने स्पष्ट पिछले सीजन में हर मुरली में आपको मिलेगा इशारा, बच्चे अभी आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप बच्चों के चेहरे और चलन से लोगों को मालूम हो जाएगा कि भाई भगवान स्वयं आ चुके हैं। परंतु वो कैसे होगा तो हर एक को सोचना पड़ेगा, ऐसा कैसा होगा, मेरे चेहरे से मेरे चलन से भगवान कैसे प्रत्यक्ष होगा, क्वेश्चन तो उठता है ना। जब भगवान ने कह दिया होगा तो होगा, तो पर किस बच्चों से होगा। तो इस पर जब बुद्धि चला तो फिर वही याद आई कि बाबा मम्मा ने क्या किया, दादियों ने क्या किया, जो दादियों के लिए आकर्षण होती थी, भाई दादी का बस एक नजर मिल जाए, दादियों को एक सेकंड के लिए देख ले, खिड़की से भी देख ले, दूर से भी देख ले, तो ऐसी क्या उन्होंने किया। देखो आज हमारी जानकी दादी है 98 इयर्स पूरा हुआ 99 में, जाओ तो 6:30 हो गया, बस अब मुझे शांति में बैठना है। दादी एकदम बैठी है शांति में, 7:30 के बाद थोड़ा सा बोलती भी है, पर 6:30 से 7:30 एक घंटा तो बिल्कुल नहीं, ऐसी शांति में खो जाती है। मेरा कहना है ये है कि बाबा इस समय पर हम सबको एक ही बात पर फोर्स दे रहे हैं कि अब थोड़ा सा साइलेंस पावर जो है, शांति की जो शक्ति है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ज्ञान बहुत हो गया है, ज्ञान देना भी बहुत किया हम लोगों ने, परंतु स्वयं को उस शांति की गुह्यता में वो खो जाना। जैसे मैं यहां आया इतना अच्छा लगा मुझे, आप सभी इतने शांति में बैठे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मुझे बोलना चाहिए, इतना अच्छा लग रहा था। तो यही सच है, इस समय पर हम सब आत्माओं को बोलना ठीक है, पर जितनी साइलेंस में हम खो जा सके अपने आप को, बोलना भी जरूरत है, तभी भी हम नहीं बोलते हैं तो और अच्छा। तो साइलेंस की शक्ति का इस समय पर हम लोग नहीं करेंगे तो आगे वो भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप चाहे तो कर सकते हैं, परंतु आगे आने वाले समय कुछ ऐसा है जो आप करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप एक थोड़ा सा देख लीजिए, आज कश्मीर है, कितना संपन्न था, लोग क्या जाते थे वहां देखने के लिए, भाई भारत में स्वर्ग है तो कश्मीर है, ऐसे लोग समझते थे, भाई घूमने जाना है वहां जाओ, तो आप समझ सकते हैं कि वहां ही रहने वाले अपने आप को क्या समझते थे, कितना खुश, कितना आनंद और कितना पैसा, क्या नहीं था वहां। रातों रात ऐसी हालत हो गई जो दूसरी मंजिल तक पानी रुक गई, जो लोगों का जीवन उनके क्या आप सोचो सुनो पूछे ना। तो ऐसे समय में वहां हम करें क्या और दूसरों को क्या करें, न खाने लिए है, न पीने लिए है, न कोई दवाई है, न कोई ऐसा है जो प्लेन से आते हैं एक किसी को उठाते हैं और लेके जाते हैं, ऐसे करते 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 अभी तक टाइम पास हो गया। पर क्या हालत होगी, लखपति करोड़पति भी होंगे सब पानी में, सब रोडपति होंगे। तो समय कुछ ऐसे आ रहा है, हो रहा है। आज आप सीरिया का देखिए, इराक का देखिए, अभी वेस्टर्न अफ्रीका, वहां भी एक ऐसा कोई बीमारी आई इबोला करके, तो वो ऐसी बीमारी जो पूरी शहर की शहर खाली हो गई, खत्म हो गई, हमारा सेंटर भी बंद हो गया, कोई जिज्ञासु नहीं, कुछ नहीं। एक बेचारा वहां संभालता था वो रह गया, अभी वो क्या करे। तो आखिर प्लेन भी आना जाना बंद होता जा रहा था। फिर एक सीट बाबा ने इनको किसी तरह से मैनेज हो गया, तो वहां से वो निकलाए, पूरी शहर की शहर खाली। तो कभी भी कुछ भी होता है तो हो जाता है, किस शहर में कब क्या होता है कुछ पता नहीं। तो इसीलिए आगे आने वाली समय को देखते हुए हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं हमारे साथ है, उनके साथ कोई नहीं है, हमारे साथ बाबा है। हम जाएंगे भी बाबा के पास ही जाएंगे, परंतु उसके पहले हमको क्या करना है ये बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कान पकड़ाया है हम लोग। अभी हम बच्चों को एक ही काम करना है, जब कभी चोरी से थोड़ा सा टाइम निकाल के शांति अपने आप में खो जाना। हमने बाबा को देखा था, मम्मा को देखा था, जब भी बाबा मम्मा थोड़ा अपने में शांति में जाते हैं तो सब मना करते हैं, बाबा शांति में अभी नहीं, अभी दूसरा। तो हम ब्राह्मणों की जीवन में इस समय पर अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ है, हाईएस्ट प्राप्ति है। तो जब आपको हम ये देखते हैं तो आप खो गए हैं साइलेंस। हमने ये बाबा में देखा, मम्मा में देखा, सेवा करते थे वो अपना समय फिक्स था, परंतु उससे ज्यादा जो अपने आप की साइलेंस की पावर को अपने में लाने का वो पुरुषार्थ उनका पहला लक्ष्य था। लास्ट दिन भी बाबा ने योग कराए थे, खुद संदली पर बैठ के योग कराए थे, मुझे याद है। तो इसीलिए हम जो भी हम मधुबन निवासी है इस समय पर, दादियां हैं हमारे, हम सबका जो इस समय पर जो निगाह है वो साइलेंस पर है और किसी चीज पे नहीं। बाकी बाबा चला रहा है यज्ञ को, इतना बड़ा कार्य है, बाबा का कार्य है, बाबा का यज्ञ है, बहुत अच्छा चल रहा है। परंतु हम बच्चों का जो निगाह है इस समय पर, तो अपने आप को खो जाने का, बिल्कुल उसमें खुश होता हूं मैं, कुछ करने में खुशी नहीं होती है जितना कुछ न करके मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, ये बहुत अच्छी और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जो आप सभी भी बहुत लक्की सोल्स है जो आपको बाबा ने चुन चुन करके साइलेंस की बट्टी में लाया है। आप सोचो आबादी क्या है, हमारा भारत का ही 120 करोड़ आबादी है। अब मैंने पूछा हमारे अजमेर से कितने आए हैं, बोला 300 आए हैं। कहां 120 करोड़ और कहां 300 बाबा के लाल। तो कितनी महान आत्माएं हो जो आपको बाबा ने चुना, आप लोगों को ले आए और शांति में बैठे थे, और मैं देख के मुझे इतनी खुशी हुई। तो मैंने कहा मेरा भी सौभाग्य है जो बाबा के ऐसी बच्चों से मिलने का, और मैं भी आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि साइलेंस को बढ़ाइए और बातों में कुछ नहीं रखा है। ज्ञान तो इतना ही है, आप शरीर नहीं आत्मा है, शिव बाबा का बच्चे हैं, बाकी कोई चीज ज्ञान का अपने को कोई मतलब नहीं है, वो किसी चीज में कोई काम में आने की नहीं है। आना है तो मैं वही आत्मा हूं जो भगवान ने चुना है, भगवान के हैं हम, जो आपकी नजर से, आपकी चेहरे से, चलन से लोग भगवान को देखेंगे। मंदिर में नहीं, भगवान की प्रत्यक्षता और कोई रास्ता नहीं है इन्हीं आत्माओं से। बाबा आप सबको चुना है एक ही स्वार्थ से, आप तो है ही, आपका पार्ट फिक्स है, परंतु भगवान का स्वार्थ इतना ही है, इन बच्चों द्वारा ही मुझे मेरी प्रत्यक्षता होगी। जो ऐसा समझते हैं हाथ उठाए, है ना। वैसे भी दुनिया में भी ऐसे ही होते हैं ना, बच्चे मां बाप का नाम बाला करें, यही चाहते हैं ना सभी दुनिया में, हमारा बच्चा ऐसा हो जो मेरा नाम बाला करे। तो हमारा बाप भी यही आशा रख के बैठे हैं कि मेरे बच्चे मेरे नाम बाला करे। तो इसीलिए बाप के नाम इस विश्व में बाला करने वाले बच्चे आज हमारे सामने। सचमुच भगवान को भी आपसे अच्छे बच्चे नहीं मिल रहे इस दुनिया में, मिलेंगे है? भगवान को भी आपसे अच्छे बच्चे नहीं है, इसलिए चुन चुन के बाबा लाए। तो अपने को भी वो खुशी होनी चाहिए कि देखो भगवान ने हमको ही चुना है, तो फिर भगवान का नाम भी तो बाला करना होगा। कैसे करेंगे? मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो इस तरह से हम अपना अभ्यास करेंगे और हम लोग सभी एक ही आशा में जी रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। हम बाबा से यही कहते हैं, बाबा जो कराना था आपने करा लिया, देश विदेश की सेवा हो गई, विनाश की भी नजारे आ रही है, तो और क्या करना है। इसीलिए अपने आप को अभी तपस्या में इतना अच्छा आनंद ले, तो दुनिया में कुछ भी हो जाए आपको कोई उसका असर नहीं होगा। नहीं तो दुनिया की रोज कुछ ना कुछ बात सुनते सुनते कुछ ना कुछ होगा। तो दुनिया में जैसे अभी थोड़े टाइम में कहा ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उनका आए ना आए तो पर हमारे लिए तो अच्छे दिन आने ही वाला है। ओम शांति।